गुरु भक्ति योग। गुरु की शरणागति में जाना, यही आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। जब तक गुरु में अविचल श्रद्धा न हो, तब तक किसी को भी परम सुख भोगने को नहीं मिलता। हमें अयोग्य लगता हो, फिर भी गुरु जो करते हैं वह योग्य ही है। गुरु के उपदेश में अविचल और अविरत श्रद्धा सच्ची गुरु भक्ति का मूल है। गुरु सदैव अपने शिष्य के हृदय में बसते हैं। कबीर जी कहते हैं, गुरु और गोविंद दोनों मेरे समक्ष खड़े हो तो मैं किसको प्रणाम करूं। धन्य है वे गुरुदेव जिन्होंने मुझे गोविंद के दर्शन कराए। केवल गुरु ही अपने योग्य शिष्य को दिव्य प्रकाश दिखा सकते हैं। गुरु अपने शिष्य को असत में से सत, सत में, मृत्यु में से अमरत्व में, अंधकार में से प्रकाश में और भौतिकता में से आध्यात्मिकता में ले जाते हैं। यदि कोई मनुष्य गुरु के साथ अखंड और अविच्छिन्न संबंध बांध ले तो जितनी सरलता से एक घट में से दूसरे घट में पानी बहता है, उतनी ही सरलता से गुरु कृपा बहने लगती है। हर रोज गुरु की सेवा का प्रारंभ करने से पहले शिष्य को मन में निश्चय करना चाहिए कि पूर्व की अपेक्षा अब अधिक भक्ति भाव से एवं अधिक आज्ञाकारिता से गुरु की मैं सेवा करूंगा। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती है, तब यह योग चमत्कार दिखाता है। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ उपरोक्ष सत्संग है। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। श्री लीलाराम जी, अब संत लीलाराम जी के नाम से प्रसिद्ध होने लगे। संत लीलाराम जी थोड़े वर्षों तक नैनीताल के जंगलों में एकांत में अपनी ब्रह्म निष्ठा में ही लीन रहे। साथ ही साथ सत्संग, सेवा और साधना में भी नित्य लगे रहे। सत्संग के बिना दिवस या रात्रि में वे कभी भी भोजन नहीं करते थे। थोड़े समय के बाद उनके पूज्यपाद गुरुदेव ने नश्वर देह उनकी समाधि टंडोजान मुहम्मद के आश्रम में ही बनाई गई। वहां हर वर्ष उनकी जयंती मनाने के लिए दूर दूर से शिष्य भक्त एवं कंवर राम जैसे महापुरुष भी आते थे। इस उत्सव की पूरी व्यवस्था करने के लिए संत श्री लीलाराम जी स्वयं आते और हर प्रकार की सेवा करते, किंतु किसी भी दिन आश्रम में नहीं रहते। उत्सव पूरा होते ही तलहार चले जाते थे। एक बार संत श्री लीलाराम जी जब गुरुदेव के आश्रम में आए, तब उन्होंने देखा कि आश्रम में साधकों की साधना करने के लिए जो कमरे बनाए गए थे, उन्हें गृहस्थी लोगों को रहने के लिए किराए पर दे दिया गया था। यह देखकर संत श्री लीलाराम जी अत्यंत दुखी। गृहस्थ साधक तुलसीदास ने पैसे के लोभ में यह कार्य किया था। उन्होंने तुलसीदास को फटकारते हुए कहा, मोह माया के आवरण में आकर तुमने गुरुदेव के पवित्र आश्रम को गृहस्थियों के रहने की जगह बना दिया है, यह जरा भी योग्य नहीं। शिष्य के रूप में तुमने यह अच्छा काम नहीं किया। आश्रम के दूसरे गुरु भाई संत श्री लीलाराम जी से खूब डरते थे। क्योंकि अपनी वाक सिद्धि के कारण श्री लीला राम जी जो कुछ भी बोलते थे वह होकर ही रहता था। एक बार संत लीला राम जी किसी गांव में जा रहे थे, तब एक गरीब स्त्री अपने मृतक पुत्र को रास्ते में रखकर दूर बैठकर रो रही थी। इस बालक को अचानक रास्ते में सोया हुआ देखकर संत श्री लीला राम जी के मुख से एकाएक निकल पड़ा, बेटा बेटा उठ उठ। संत श्री लीला राम जी के वचन सुनकर वह मृतक बालक तुरंत उठ खड़ा हुआ और जाकर संत श्री लीला राम जी के चरणों में जा गया। वह स्त्री तो यह दैवी चमत्कार देखकर दौड़ती दौड़ती आई और संत श्री लीला राम जी के पैरों पर पड़कर खूब खूब आभार मानने लगी। यह देखकर संत श्री लीला राम जी उस स्त्री से प्रार्थना करने लगे, हे मां, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि यह बात तू किसी से न कहना, परंतु सत्य कहां तक छुप सकता है। तब करे पाताल में प्रकट होए आकाश, रज्जब तीनों लोक में छिपे न हरि का दास। थोड़े ही समय में गांव के लोगों को इस चमत्कार का पता चला। लोगों को इस बात का पता चल गया है, यह जानते ही संत श्री लीला राम जी तुरंत उस गांव को छोड़कर दूसरी जगह चल पड़े। आत्म साक्षात्कार के बाद पूज्य लीला राम जी महाराज केवल एक ही स्थान पर न रहे, वरन जंगलों, पर्वतों एवं तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते रहे। उत्तर भारत के पहाड़ों पर उन्होंने अनेकों उच्च कोटि के संतों, महात्माओं, सिद्ध पुरुषों एवं तपस्वियों का संग किया। पांचवे सिख गुरु अर्जुन देव ने संत महात्माओं के संग एवं महिमा का सुंदर वर्णन करते हुए कहा है, साध के संगी मुख उजल होत, साध संगी मलु सगली खोत, साध के संगी मिटे अभिमानु, साध के संगी प्रकटे सुज्ञानु, साध की महिमा बरने कौनु प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ माही समानी।